चल रही थी कथा, 10 दिन तक चला, उसमें हमको कालिया दमन लीला दिया गया था, लेकिन किसी संयोग वश ये हम कर नहीं पाए। उस दिन गुरुवर्ष के विषय चलाए थे जगदानंद जगत जगत आत्मा पर, तो उनको क्लास देना बहुत उचित था, इसलिए हम ये वर्णन नहीं कर पाए। तो डॉक्टरों ने कहा कि आपका ये प्रसंग अधूरा रह गया है, नहीं हुआ है, तो आप कर दीजिए। खैर, हमारे में तो ऐसी बड़ी बड़ी लीलाओं का कोई व्याख्यान करने की योग्यता नहीं है, लेकिन यहाँ वरिष्ठ भक्त उपस्थित हैं, उनके चरणों में याचना करते हुए कृपा करें। वरिष्ठ वैष्णव, उसके बाद श्री प्रभुपाद महाराज, उसके बाद गौर नेताजी राधा कृष्णी जगन्नाथ मंदिर के बजाय जी, इन सबके आश्रम में भीख मांग कर उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकते, उनकी कृपा के बिना कोई समर्थ नहीं। एक तो उनकी कृपा से, और क्यों करना चाहते हैं, अगर कुछ उनका वर्णन कर पाए तो हम अपना शुद्धि कर पाएंगे। महाराज दीक्षित कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो कृष्ण कथा है ये जैसे गंगा तीनों लोगों को पवित्र करती है, ऐसे ही कृष्ण कथा तीनों व्यक्तियों को पवित्र करती है, श्रोता को, वक्ता को, और इसका अनुमोदन करने वाले या जिज्ञासा करने वाले को। प्रश्न पूछता है तो उसको भी पवित्र करती है, कोई इसका कृष्ण लीला का वर्णन करता है उसको भी पवित्र करती है, और जो श्रवण करता है उसको भी पवित्र करती है। ये कृष्ण लीला, कृष्ण कथा बहुत महत्वपूर्ण। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंध में जब विदुर जी ने कृष्ण लीला के बारे में, कृष्ण अवतार के बारे में मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया, तो मैत्रेय जी बहुत प्रसन्न हुए और उनका साधुवाद प्रकट किया। साधु वीर त्वा कृष्णम अवतार कथा हरे, हे साधु पुरुष, हे वीर, तुमने भगवान कृष्ण के अवतार की और उनकी लीलाओं की कथा का श्रवण करने की जिज्ञासा की है, वह कृष्णम, तुमने पूछा है उनके बारे में, और जिनके बारे में तुम ये कथा सुनना चाहते हो वो कैसे हैं? तो कहते मृत्यु पांच विनाशकम, वे मृत्यु के पांच को विनाश करने वाले हैं, उनकी कथाएं भी जो श्रवण करता है उसके मृत्यु पांच को काटने वाले हैं। हम सभी मृत्यु के पास में बंधे हुए हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं, मृत्यु भाव बंधन लगा हुआ है हमको, तो इसका उपाय यही है। महाराज कृष्ण ने भी जब जिज्ञासा की दसवें स्कंध में और लीलाओं को विस्तार से सुनने के लिए, तो महाराज कृष्ण ने कहा निवृत्त दृष्टि रूप गीय माना भव औषध छोत्र मनोविरामा, भव औषध छोत्र, ये जो कृष्ण की कथा है ये भव औषधि को, भव रोग को निवारण करने के लिए एकमात्र औषधि दवा है। बड़े बड़े अस्पताल बनाने के लिए लोग लालायित हैं, और कभी कभी भक्त जाते हैं कुछ डोनेशन के लिए, तो कुछ लोग कहते हैं अरे हॉस्पिटल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, लेकिन कितना हॉस्पिटल बन गया लेकिन एक भी रोग कम नहीं हुआ, और बढ़ रहे हैं रोग। क्या इतना हॉस्पिटल हो गया, इतने डॉक्टर हो गए, क्या रोग कम, रोग कम नहीं? ये चार प्रकार की समस्याओं का हल नहीं हो सकता। और हॉस्पिटल में भले आपके कोई रोग का इलाज हो जाए लेकिन भव रोग का तो इलाज नहीं। कोई हॉस्पिटल है जहां जाकर आप डॉक्टर से पूछिए कि डॉक्टर साहब ये मेरे को बार बार मरना नहीं है, मरना पड़ रहा है, बुढ़ा होना पड़ रहा है, इसका कोई इलाज है? तो उपाध महाराज विदेश में वैज्ञानिकों से कहते थे कि तुम मानव समाज की समस्याओं का हल कर रहे हो, मानव समाज की सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा भय है मृत्यु, तो इसके बारे में बोला हाँ हम ये भी कर रहे हैं, हम एक दिन सफलता प्राप्त कर लेंगे कि व्यक्ति नहीं मरेगा। तो प्रभुपाद जी कहते कि ऐसा कहने वाले भी मर रहे और अब तुम प्रयास कर रहे हो, तुम भी मरोगे, बिना बैलेंस का चेक क्यों बांध रहे हो? तो इसका एकमात्र इलाज है भव तथा छोत्रा इस कृष्ण कथा को सुनना यही एकमात्र भव औषधि है। भव बंधन का भव रोग को नाश करने के लिए एकमात्र औषधि है। और मनोविरामक और कृष्ण कथा मन को भी आनंद प्रदान करने वाली है। भगवान की कथा इतनी आनंद प्रदान करने वाली है कि भगवान को भी मोहित कर देती, भगवान को भी आनंद देती है। एक बार जब आप सुना होगा रामायण का प्रसंग, लव और कुश राम कथा को गाकर सुनाते थे, तो राम कथा को गाकर सुनाते थे तो भरत जी ने सुना कि अरे ये तो राम कथा सुना रहे, तो उन्होंने राजभवन में इस कथा का व्यवस्था किया और आप आइए और हमारे राजभवन में इस कथा गाइए राम की कथा। तो वो गाकर सुनाते थे, उनका व्यवस्था किया, सारे विद्यावासी वहां आए, नीचे बैठे थे, भगवान राम ऊपर सिंहासन पर बैठे थे और सामने लव कुश को आसन दिया गया और वो दोनों गाने लगे कथा। तो जो अयोध्यावासी नीचे बैठ कर जो श्रवण कर रहे थे राम की कथा को, वो इतने आनंद विभोर हो रहे थे कि कभी कभी कहना होता नाना दादा को उसकी पीठ पर मारते हैं, उसकी जंगा पर मारते हैं, ऐसा धक्का मारते हैं, क्या ऐसा वो सब आनंद ले रहे थे। और कथा किसकी हो रही थी? राम की। और राम वहां बैठे हैं, राम की तरफ कोई नहीं देख रहा, राम बैठे हैं और सब उन लव कुश की कथा का ही आनंद ले रहे हैं। राम ने सोचा मेरी कथा हो रही तो वो कथा में ही आनंद ले रहे हैं, हमारी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा और लग रहा है कि हमसे ज्यादा हमारी कथाओं में आनंद है, तो भगवान की तरफ कोई देख ही नहीं रहा। भगवान सिंहासन से उतर गए, धीरे से जाकर श्रोताओं के बीच में बैठ गए। तो वो श्रोताओं तो मग्न है कथा में, आनंद ले रहे हैं, तो वो श्रोता जिसके पास में बैठे वो राम को भी ऐसा मान रहा है। राम जी क्या आनंद है हमारी कथाओं में। तो इस प्रकार भगवान मनोभिराम, मन को आनंद देने वाले भगवान की कथा है। और ये कालियादमन की लीला है, इसमें तो अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण कृष्ण लीला कृष्ण चरित अद्भुतम, ये अद्भुत लीला करते हैं भगवान, बहुत ही अद्भुत लीला है। क्या अद्भुत लीला थी इसमें? तो कहते हैं भगवान ने ये कालियादमन की लीला करके कालिया पर भी कृपा किया और कालिया को जो कालिया दूसरों को कष्ट दे रहा था तो उन जिनको कष्ट दे रहा था उनको भी उसके कालिया के कष्ट से दूर किया और कालिया को जिनसे कष्ट था उस कष्ट को भी दूर किया। तीन प्रकार का कार्य एक लीला में है। क्या कालिया से उस वहां होने से वहां का जल दूषित था, वहां का क्षेत्र पूरा दूषित था और वहां से ब्रजवासी गौएं सब कष्ट पा रही थी, तो उनको मुक्त किया उस दुख से। साथ साथ में कालिया का क्या प्रॉब्लम था? कालिया वहां क्यों रह रहा था? गरुड़ जी के भाई थे तो वहां रह रहा था और सबको दुख दे रहा था, तो सबका दुख भी दूर किया और उस दुख देने वाले का दुख भी दूर किया, कालिया का भी दुख दूर किया। अब तुम्हें गरुड़ जी से कोई भय नहीं, जाओ रमणीक में चलेगा, तुम यहां नहीं रह। तो इस प्रकार की अद्भुत भगवान की लीला है, एक ही लीला में कितने प्रकार के लोगों का दुख दूर किया, जो दुख दे रहा है उसका दुख दूर किया, जो दुख पा रहे हैं उनका दुख दूर किया, कितना अद्भुत चरित्र है भगवान का। तो आइए हम थोड़ा सा संक्षिप्त में इस लीला का वर्णन सुनते हैं, क्योंकि बहुत तैयारी में नहीं कर पाया, तीन दिन से इस समय व्यस्त रहेगा। तो ये उस समय का लीला है जब बलराम जी ने धनुष का वध कर दिया और उस समय का वध करने के बाद धनुष का वध के बाद लगता है कि ये गर्मी के दिनों की लीला है, समर के समय का ग्रीष्मकाल की। धनुष के वध के बाद धनुष का भी बहुत अद्भुत लीला है, बहुत अद्भुत। तो धनुकासुर का वध के बाद में भगवान जो गोचारण को जाते थे वो, तो एक दिन की घटना है कि गोचारण को गए हुए थे और कृष्ण से दूर ग्वाल और गाय और बकरी सभी को बहुत प्यास हो रहा, उनका गला सूख रहा था, तो वो जल पीने की इच्छा से वे जल पीने की इच्छा से यमुना के उस तट पर गए जिस तट के निकट कालिया का दह था। ये कालिया का जो दह था ये यमुना के अंदर कालिया नहीं रह रहा था, कालिया जो रहता था वो यमुना की जो बहती थी उसके तट पर एक बहुत बड़ा सरोवर था, कुंड था, उसमें वो रहता था, लेकिन उसका प्रभाव यमुना के जल को भी दूषित करता था। तो वहां पर गए और तट पर जाकर उन्होंने पानी पिया, बछड़ों ने पानी पिया, ग्वाल बालों ने पानी पिया, और पानी पीते ही क्या छूते ही वहां जाते ही सब मूर्छित होकर गिर पड़े, जो जहां थे वहीं गिर पड़े। तो यमुना के भीतर अगर गए तो वहां भीतर ही गिर पड़े, तो बाहर थे तो बाहर गिर पड़े, तट पर गिर पड़े, और बछड़े और ग्वाल बाल सब मूर्छित प्राय मृत जैसे होकर गिर पड़े। जब गिर पड़े तो विक्षंतान तथा भूतान कृष्णो योगेश्वरेश्वर, विक्षतान कृष्णा आए दौड़ते हुए, क्या हुआ क्या हुआ, और विक्षतान उनको देखा, भगवान ने देखा तद भूत कौन कृष्ण, तो सुखदेव गोस्वामी कृष्ण का बता रहे कि योगेश्वर योगियों के भी ईश्वरों के भी ईश्वर, योगेश्वर के भी ईश्वर, जो बड़े बड़े योगी होते हैं उनके ईश्वर, जो बड़े बड़े भक्त हुए, महात्मा हुए, महापुरुष हुए, उनके ईश्वर, या जिनका भक्ति किया जाता है, भक्ति जिनका करना चाहिए वे ईश्वर। हम लोग नहीं जानते कि भक्ति किसका किया करना चाहिए, भक्ति भगवान का ही होता है, हम समझते हैं किसी का भी हम कर रहे हैं तो वो भक्ति है, नहीं वो भक्ति नहीं, भक्ति जो होता है वो कृष्ण का होता है। तो योगेश्वरेश्वर योगियों के भी ईश्वर, बड़े बड़े योगियों के, या बड़े बड़े महात्मा योगी जिनका जो जिनके स्वामी हैं वे योगेश्वर ईश्वर, उनको देखा तो देखा तो कैसे देखा कि सब मूर्छित होकर गिर गए, कौन गिर गए हैं, स्वनाथान जिन जो कृष्ण को ही अपना स्वामी मानते थे वे सब गिर गए, उनको देखा जो कृष्ण को ही अपना नाथ मानते, कृष्ण के सिवा वो और किसी को नहीं जानते ब्रजवासी लोग, तो इक्षया अमृत वृष्णया, तब कृष्ण ने देखा अपनी अमृत भरी दृष्टि से, कृष्ण का दृष्टि बहुत अमृत जैसा है, अमृत का अर्थ मृत को भी जीवित कर देते हैं, इच्छया अमृत वृष्ण अपनी अमृत भरी दृष्टि से देखा, दर्शया को जैसे बारिश करते हुए अमृत का बारिश करते हुए देखा है, तो अनाथ था, क्यों देखा, क्योंकि देव कृष्ण को भी इतना नाथ समझते थे, कृष्ण सबके नाथ हैं, लेकिन कौन उनको समझते हैं जाकर कहते कि नहीं आप ही हमारे नाथ हैं, हे जगन्नाथ आप ही, वो सारे जगत के नाथ हैं लेकिन उनसे जाकर कहना कि प्रभु आप ही हमारे नाथ, मतलब उनको शरणागत हो जाना, उनके समर्पण कर देना, तब भगवान उनकी रक्षा करते। तो समजीवयत, समजीवियत सबको जीवित कर दिया, समजीवियत का अर्थ है जैसे पहले थे ऐसा कर दिया, सब जो कोई फिसल कर गिरते समय किसी का ऐसा हाथ टूट गया हो या पांव में मोच आ गई हो या और कुछ क्षति हो गई हो, तो वो सब कुछ ठीक कर दिया और उनको पुनः जीवित कर दिया, अपनी दृष्टि मात्र कृष्ण ने अपनी दृष्टि मात्र से उनको जीवित कर दिया। कभी कभी लोग जाते हैं कुछ बीमारी हो जाती है और बहुत असाध्य रोग होता है और बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, और एक डॉक्टर कर पाता है तो आप तो देवता, आप तो भगवान, तो खाली एक रोग का निवारण करने वाले को भगवान कहते हैं, अगर किसी को बिना दवाई से खाली देख कर रोग दूर कर दे तो, और रोग की बात छोड़ो मरे हुए को दृष्टि डालकर जीवित कर दे तो लोग क्या कृष्ण को भूल कर उसी का मंदिर बनाए, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं, ऐसी किसी में समस्या नहीं है भगवान के लिए, ऐसा सामर्थ्य नहीं, फिर भी लोग भगवान का गुणगान नहीं करते, उसी व्यक्ति का गुणगान करते हैं। हमने तो देखा एक योगी होगा या सिद्ध होगा खुद को जीने के लिए दो तीन महीना तक वेंटिलेटर कहते हैं, वेंटिलेटर पर रखा गया, वेंटिलेटर जो सांस नहीं ले सकता अभी, उसको अपने से जीवित रहने की समर्थता नहीं है लेकिन जीव है अंदर, तो उसको डॉक्टर वेंटिलेटर पर रखते हैं जो ऑक्सीजन भी मिलता है और चलता रहता है, मशीन से सब चलता है, ये मशीन वो मशीन से चलता है, उसको वेंटिलेटर कहते हैं। ऐसा दो महीने तक वेंटिलेटर पर रहने वाले को भी लोग भगवान कहते हैं, तो भगवान है। और मंदिर बनाने का योजना बना, लेकिन भगवान वो अपनी दृष्टि से मृत को जीवित करते हैं और सब जीवित करके, ऐसा नहीं कि जीने के बाद कुछ उनके अंदर विष का प्रभाव रह गया या और कोई प्रॉब्लम रह गया या पिया था तो कुछ आगे प्रभाव भी नहीं, जैसे पहले थे ऐसे सब जीविए ऐसे कर दिए, और जब उनकी चेतना लिप वापस आ गई ठीक हो गए तो उन्होंने पूछा, ओ हम मर चुके हैं, अंत मत तद राजन गोविंद अनुग्रहित इच्छित, वो सोचा कि हम मर गए थे लेकिन निश्चित इस गोविंद की कृपा से ही हम जीवित हुए, पुनरुत्थान निश्चित, हम जो वापस उठ खड़े हुए हैं ये गोविंद की कृपा, ये है भक्त। कहीं भी कुछ हो जाए हम बच जाते हैं तो इसका थैंक यू भगवान को देना चाहिए, लोग दूसरा दूसरा को थैंक यू देते हैं, अरे वो ऐसा हो गया इसलिए मैं बच गया, कुछ नहीं भगवान ने तुमको बचाया और कोई नहीं बचा सकता, लेकिन वो दूसरे को थैंक यू, भगवान को थैंक यू नहीं देते, लेकिन ये तो भक्त थे नहीं, भगवान ने ही हमको बचाया। जब इस प्रकार भगवान ने देखा कि हमारे भक्तों को इस प्रकार ये कष्ट दे रहा है, कष्ट का कारण जो है ये कालिया है, तब सुखदेव जी कहते हैं कि उस कालिया को विलोक्य दूषिताम कृष्णा कृष्ण कृष्ण हिना विभो, तीन कृष्ण आए इसमें, सुखदेव विलोक्य दूषिताम, विलोक्य दूषित देखा दूषिताम इस क्षेत्र को यमुना के जल को विशुद्ध दूषित हुए देखा, कृष्णाम दूषिता कृष्णाम कृष्णा को देखा, कृष्णा को देखा किसने, कृष्ण ने कृष्णा को देखा, कृष्णा मतलब यमुना, तीन कृष्णा, कृष्णा मतलब यमुना, विलोक किसने देखा, कृष्णा और कृष्णा हिना विभू, तीनों काले कृष्ण कृष्ण तीन, कृष्णा मतलब यमुना है, कारो कारो यमुना जी हो, कृष्णा जो कृष्ण मतलब काला जल वाली यमुना जी, यमुना जी कारण भी कृष्णा है, कृष्णा उनका बहुत से भक्त लोग कहते हैं कि यमुना जी का जल इतना काला क्यों है, तो कोई कवि ने कहा कि यार लगता है इसमें नीलम पिघल गया, नीलम आता नीले रंग का, नीलम पिघल गया, एक भक्त ने कहा नहीं कृष्णा नहाकर निकल गया इसलिए ये काला है, नीलम नहीं पिघल गया कृष्णा नहाकर निकल गया इसलिए ये काला है, बहुत प्रसिद्ध काल होगा, तो इसलिए कहते विलोक के दूषिताम कृष्णा को, कृष्ण भगवान ने देखा यमुना को दूषित कर रहा कृष्णा, किसने देखा, कृष्ण ने, कौन दूषित कर रहा है, कृष्णा हिना की वो कालिया वो भी काला, यमुना का जल भी काला, उसको देखने वाला भी काला और उसको दूषित करने वाला भी काला, कृष्णा हिना विभू, विभू सर्वसमर्थ भगवान है, सर्वसमर्थ भगवान है, मतलब वो दूषित है तो उसको फिर से पवित्र करने में या उसकी जो भी करते उसको दूर करने में वो समर्थ है, विभू उन्होंने देखा, तस्या विशुद्धम इच्छवान और उसको फिर से विशुद्ध करने की इच्छा से सर्वतम उदा भाष है, उदा भाष है उस यमुना जी से, उस सर्प को, उस यमुना जी को शुद्ध करने की इच्छा से, विशुद्ध करने की इच्छा से उस सर्प को वहां से उदा भाष है भगा दिया, उस सर्प को भगा दिया, जब भगा ये इतना बात कहा तो सुखदेव जी से रहा नहीं गया, क्यों नहीं रहा गया, ये भगवान की बाज लीला है, ये कहते हैं, कहते हैं महाराज कृष्ण ने कहा कथमंत जले अगाधे निर्ग्रहात भगवान है, भगवान ही अरे इतने अगाध जल में, हमने सुना है कि वो जल बहुत गहरा था, और हमारे आचार्य ने लिखा कि जो जो कालिया का दह था वो सरोवर बहुत बड़ा सरोवर था, देवता भी उसको लांग नहीं लांग सकते थे, ऐसा आचार्य श्रीधर स्वामी ने लिखा है। कोटेशन में दिया प्रभुपाद जी, दीर्घ योजन विस्तारम दुस्तरम श्री दशे अपि, देवताओं के लिए भी उसको पार करना बड़ा मुश्किल था, इतना गहरा था। कभी कभी बहुत गहरा होता है तो उसको कहते नहीं नहीं भाई बहुत गहरा है, तो देवताओं भी उसको पार नहीं करें, इतना तो गहरा इतना बड़ा था और उसमें वो कालिया रह रहा था, तो कैसे कालिया को भगाया। और सवे बहु युगावास, वो तो बहुत लंबे समय से रह रहा था, यथा आसित विप्र कक्षता, विप्र कहते हैं विप्र का पिता, आप सुबह हम सुन रहे थे ब्राह्मण की चार प्रकार के विप्र, विप्र जो वेदों में पारंगत हो जाता है, वेद पढ़ने का उसको अधिकार दिया जाता है, द्वित दीक्षा देकर यज्ञ पवित्र देकर उसको वेद पढ़ने का अधिकार देते हैं, फिर उस वेद में जो पारंगत हो जाता है शास्त्र में पारंगत, तो विप्र कह गए हे आप विप्र, हम आप सब कुछ जानते हैं, आपको सब ज्ञान है, विप्र कक्षता, इसको विस्तार से कहो, किस प्रकार भगाया, क्या किया कृष्ण ने, इतने गहरे जल से किस प्रकार भगाया, इसको विस्तार से कही। ब्रह्मन भगवत तस्य भूमनत् स्वतंत्र वस्तु, वे भगवान जो अपनी इच्छा अनुसार वर्तन करते हैं। गोपाल उदार चरितम, गोपाल कहकर बुला रहे हैं कृष्ण को, यहाँ पर गोपाल कहते हैं, गोपाल मतलब उनकी जो बाल लीला है, गोपाल जब वो गायों का पालन कर रहे थे उस समय की जो बाल लीला है, तृप्तो अमृतम दृष्ण, उस बाल लीलाओं कथाओं अमृत का पीकर, उस अमृत को पीकर, कथा अमृत को पीकर कौन तुष्ट हो सकता है, इसकी और प्यास बढ़ती जाती है। बाल लीलाएं भगवान की बहुत मधुर है, बहुत मधुर बाल लीला है, और वे बाल लीला विशेषकर ब्रज में ही होती है। ऐसा है कि गोकुल और गोलोक दो है, लेकिन गोलोक में है बाल लीला है, गोकुल में बाल लीला है, तो भगवान की बाल लीला देखने के लिए बड़े बड़े देवता शिव जी ब्रह्मा तक आते थे, क्योंकि बाल लीला बहुत ही मधुर है भगवान की बाल लीला। एक संप्रदाय जो है तो बाल लीलाओं पर ही जुटा है, बाल लीलाओं के आगे बाल लीला तक ही, तो बाल लीला बहुत मधुर है। इसलिए तब पहले सुखदेव गोस्वामी क्यों भगा दिया, रतन बिचारे को क्यों भगा दिया, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। पहले कालिंदा काली कालिश्य आसित, उस कालिंदी नदी में जो कालिया आसित रहता था, हद कच्चित विषा अग्नि ना, उसकी विष अग्नि, विष अग्नि, विष जो था अग्नि के समान था, धुआं निकलता था उस कुंड से, विष जो वहां जो रहता था उस सरोवर के ऊपर से, उसका विष जो इतना भयंकर था कि ऐसा धुआं निकलता था, और ऐसा उसका प्रभाव था कि सत्य माया यस्मिन, उसकी गर्मी से पत्या ऊपर उरीगा खगा, पत्या ऊपर उसके ऊपर से भूल से भी कोई खगा, खगा ख मतलब आकाश और गा मतलब गमन करने वाला कोई पंछी भूल से भी अगर उसके ऊपर से उड़ जाता था तो पत्या वो झुलस कर गिर जाता या मर जाता था, इतना उसके विष का प्रभाव था, ऊपर से मुड़ा था ऐसा प्रभाव था, और उस विष अग्नि से मृत्य तिरगा यश प्राणिना निश्चित बनी, उसके विष के प्रभाव से मृत्य मिर गए थे, तिरगा यश तिरगा मतलब तट पर, अस्थावरा और जन्म, अस्थावरा मतलब जो अस्थावर चल फिर नहीं सके, वृक्ष त्रेण घास ये भी सब मर गए थे, मतलब जल का भस्म हो गए थे, और कुछ चलने वाले कीड़े मकोड़े या कोई छोटे मोटे प्राणी के चलने वाले भी बीज के बीच नष्ट हो गए, इतना विष का प्रभाव था है? और समचंड वेग विषय एवक्षते, उसके विष को इस प्रकार भगवान ने दृष्टा नदी खल सया मना अवतार, ये भगवान का अवतार तो ऐसे खलों को नाश, उनके खल का नाश करने के लिए तो हुआ है, या संयम करने के लिए, उनको संयम प्रदान, उनको सुधारने के लिए तो हुआ है, यहाँ पर नष्ट नहीं कहता, खल संयम, ऐसे खलों को संयम बनाने के लिए तो भगवान का अवतार हुआ है। इसलिए दृष्टा नदी, उस नदी को देखा और कृष्ण कदम, अब कृष्ण की इच्छा हो गई इसको यमुना को, क्षेत्र को इस खल के प्रभाव से मुक्त करना है। इसलिए क्या किया कृष्ण कदम अधिरूह ततो अति तुंगम। कृष्ण उस नदी के तट पर एक कदम का बहुत ऊंचा वृक्ष था। प्रश्न होता है कि अभी अभी तो आपने बताया कि इच्छावरा जन्मा सब मर गए थे, तो ये कदम का ऊंचा वृक्ष वहां कहां से आ गया, ये क्या नहीं मरा? तो प्रभुपाद जी ने कृष्ण बुक में इसका रहस्य खोला। प्रभुपाद जी कृष्ण बुक में लिखते हैं कि ये वृक्ष वहां पर था और हटा था, क्योंकि गरुड़ जी जब देवताओं से अमृत छीन कर जा रहे थे, ये भी बहुत बड़ी कथा है महाभारत में आती है, कटिंग और बनीता के एक बार कॉम्पिटिशन हुआ था समुद्र मंथन से, जो उसी प्रवाह घोड़ा निकला तो उनकी पूंछ कैसी है, इसमें एक बार दोनों में शर्त लगा था, तो बनीता ने कहा था कि सफेद है, सफेद ही था, लेकिन ये कदरू के जो लड़के थे ये सब जब घोड़ा निकला तो उनकी पूंछ को लिपट गए, तो वो पूंछ काला दिखा, तो बनीता जी हार गई। तो सरस्वती जी हार गई तो मेरी माँ को जहां भी जाएगी इस पर पूछा कर लेकर जाना, बनीता गरुड़ जी की माँ है, कद्रु सर्पों की माँ, तो इसलिए फिर कहा कि अभी गरुड़ जी ने पूछा कि क्या किया जाएगी, कब तक मेरी माँ इसको धोएगी। तब मुझे प्रश्न आया कि अगर तुम अमृत लाकर दे दो देवताओं तो ये मुक्त हो जाएगी बंधन। तब गरुड़ जी देवताओं से अमृत छीन कर ले जा रहे थे। जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। तो उस समय गरुड़ जी वो अमृत लेकर जा रहे थे, तो वो कलश लेकर कुछ देर के लिए उस कदम पर रुके थे और उसमें से कुछ बूंदे उस पर गिन, इस अमृत के प्रभाव से इस विष का प्रभाव नहीं हुआ उसको। और कई कई भक्त ऐसा भी कहते हैं कि वो ऋषि जो था, वो जो वृक्ष था वो ऋषि था, हो सकता है शांत रस का भक्त हो, शांत रस के भक्त वहां वृक्ष के अंदर करे तो, और उसको ऐसा कुछ प्राप्त मिला या क्या मिला, लेकिन उसको स्मरण था कि एक दिन कृष्ण का चरण मुझे प्राप्त होगा, वो उसको स्मरण था वृक्ष के रूप में। वृंदावन के वृक्ष भी हैं जो भी बड़े बड़े ऋषि हैं, साधारण नहीं, तो वो हमेशा कृष्ण का चरण मिलेगा इस बात का स्मरण करता, मतलब कृष्ण के चरण का स्मरण करता था, इसलिए वो हरा। अगर कोई जगत में कृष्ण के चरणों का कृष्ण का स्मरण करता रास्ता में वो हरा भरा रहता, बाकी तो ये जगत सबको सुखाने वाला ही। जब देवकी के गर्भ में कृष्ण आए तो वहां लिखा है सुखदेव जी ने, सुजी स्मिताम और विरोचयंती, देवकी के शरीर से प्रकाश निकल रहा था और पूरे भवन को वो तेज प्रकाशमान कर रही थी, और सुखी स्मिता और वो आनंद पूर्वक हंस रही थी। कौन कैसे हंस सकती है जिसके छह पुत्र अभी भी मारे गए हैं, और वो कैसे हंस सकती है, कोई हंस सकती है माँ? एक माँ को हमने देखा एक गांव में, उसका पुत्र मर गया था एक ट्रैक्टर के बिल के नीचे आ गया, उसने उसका लाल शर्ट था पहनने के लिए, तो 10 साल बाद भी अगर वो किसी को लाल शर्ट में देखेगी तो वो रोने बैठ जाएगी। एक माँ का ऐसा वत्सलता होती है, कभी याद करती तो होती है। अब देवकी के 6 पुत्र मारे गए और उसका इतना तेज बढ़ गया, सूती स्मिता इतना मुस्करा रही है और आनंद से मुस्करा रही है, ऐसा नहीं कोई कुछ आनंद सूची स्मिता बहुत ही पवित्र थी, बहुत ही आनंद पूर्वक वो असर है। क्यों तो कहते हैं कृष्ण हृदय में इसने कृष्ण को धारण किए दिया, गर्भ को धारण नहीं किया, दधार सर्व आत्मा कम आत्मभूता, सुखदेव गोस्वामी ने कहा देवकी ने गर्भ धारण नहीं किया, दधार मतलब धारण किया, क्या सर्व आत्मकम आत्मभूता, सभी जो जीवों की आत्माएं हैं परमात्मा जो है और आत्मभूता सभी कारणों के कारण जो भगवान है उनको धारण किया, गर्भ को धारण नहीं किया, गर्भ धारण करना अलग बात है और भगवान को धारण करना अलग बात है। ये यो वैदिक तत्व में ये तत्व जानना चाहिए, देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए लेकिन देवकी ने गर्भ धारण नहीं किया, ये वसुदेव जी ने अपने हृदय से देवकी के हृदय में स्थापित किया भगवान को। प्रभुपाद जी ने दो उदाहरण दिया था वहां पर कि जैसे पश्चिम में अस्त होते हुए सूर्य की किरणें चंद्रमा में स्थानांतरित हो जाती है, ऐसे वसुदेव जी के हृदय से मन से भगवान देवकी के मन में स्थानांतरित हो गए, समाहित हो गए। इस प्रकार समा गए कि इस प्रकार सूर्य की किरणें चंद्रमा में कैसे समा जाती है, समझो। ये बात समझना तो लोग फिर दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे दीक्षा के समय गुरु अपने हृदय में बैठे हुए कृष्ण को अपने शिष्य के हृदय में स्थापित करता है दीक्षा द्वारा, ऐसे वसुदेव जी ने दीक्षा की प्रणाली से देवकी के हृदय में भगवान को स्थापित किया। बातों को तब हम समझ पाएंगे ये बिल्कुल स्पिरिचुअल विधि तो देवकी बहुत प्रसन्न है। तो इसी प्रकार ये कृष्ण का स्मरण कर रहा था कदम ताजा ताजा है चित्र कहते हैं तुम्हारे हरे कृष्ण वाले बस बहुत ताजे ताजे दिखते बहुत ऐसे मुस्कुराते हैं। अरे भाई दिखेंगे ना कृष्ण है उनके अंदर, वो कृष्ण को लेकर चलते हैं, कृष्ण वाहे कृष्ण को हृदय में लेकर चलते हैं तभी मुस्कुरा सकते हैं। हृदय है सब हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ लेकर ही चलता है हृदय में, है ना, कोई खाली नहीं चलता है। कोई किसी की लड़की को हृदय में लेकर चलता है, कोई कोई धन कमाने की इच्छा को लेकर, जो हृदय कृष्ण को बसाने का स्थान है उसमें कुछ कुछ कचरा बचा के चलते हैं तो फिर वो कैसे कैसे कुछ रहता है। लेकिन कृष्ण को लगकर लेकर कोई बोली रहता है तो वृक्ष जो कदम का था वो इतना हरा भरा था और कृष्ण तत्व अति तुंग बहुत सुंदर अति तुंग कृष्ण भी छोटे थे लेकिन उस पर चले तो ऐसा नहीं थोड़ा चढ़ कर कूद गए, नहीं अति तुंग जो उसकी सबसे लंबी शाखा थी सब से ऊपर वहां चले। क्यों वहां चले, थोड़ा चढ़ कर कूद जाते थे, नहीं कृष्ण जैसे हम जितना ऊंचा से कूदते हैं उतना जल में बहुत आंदोलित होता है, जितना ऊंचा से कूदते हैं उतना जल बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, तो कृष्ण उस जल को डिस्टर्ब करना चाहते थे। जितना इतना ऊंचा से कूदूंगा तो जल बहुत आंदोलित होगा और कालिया को मैं भड़काऊंगा, ये कृष्ण के इसके पीछे, इसलिए अति तुंग बहुत ही ऊंचे डाली पर चढ़ते और फिर उनकी डाली पर चढ़े देखिए कृष्ण भी ना गोस्वामी कहते हैं अत्य तुम फिर आप फोटे आप फोटे आजा मतलब अपनी भुजाओं पर ठोकने लगे आप सोचते हाँ आप ऐसा भुजा तो बड़े लोग होते हैं वो ऐसा गंगा को ठोकते हैं, बच्चे होते हैं वो ऐसा भुजा को तो आप सोचते अपनी भुजाओं को ताल देने लगे ठोकने लगे और गागर समुद्र फेटा जो वृंदावन में भगवान मुकुट नहीं पहनते अपने पगड़ी या फेटा तो फेटा को गार्डन सुनो बराबर कस के बांध दिया। दो प्रकार से कस के बांधा, एक तो हो सकता है कि सनातन गोस्वामी विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर लिखते हैं कि फेटा को ऐसा करके जो उनके लंबे लंबे काले काले केस हैं तो हिंदा करना केस आगे ना आ जाए, इनके केसों को ऐसे अपने फेटे से पीछे बांध दिया युद्ध के लिए तैयारी करना है। ये होता है गार्डन सुनो का एक दूसरा भी होता है कि कभी कभी हम देखते हैं कोई काम करने के लिए ताकत का जरूरत है तो उस फेटे को लेकर इसे कमर में बांध देते हैं मजबूत से, कमर कस लो तो कमर कस लिया है तो गाडर सुनो इस पर कमर कस लिया और नेपत पद शोदे और उस बीच वाले सरोवर में कूद पड़े नेपत और कूद पड़े। जब भागवतम के शब्दों का आस्वादन होता है जिसमें जो आनंद है वो गीता कहने में आनंद होता है, जब हम व्याख्या करते करते ऐसे भागवत के शब्द पर ही बोलते हैं जिसमें सुनने में, और क्योंकि ये शब्द इतने दिव्य हैं ये शब्द कोई साधारण नहीं, भागवतम का एक एक शब्द बहुत ही दिव्य धरातल का, ये भागवतम ऐसा एक ग्रंथ है जिसमें निष्कपट धर्म का वर्णन है। धर्म को जीत के कवि ये एक ऐसा विषय है जिसको प्योर लीला है, गड़बड़ वाला बात की थी। और यही एक ऐसा ग्रंथ है जो त्रिताप को जीव के त्रिताप को मूल से उखाड़ने की बात है, मूल से उखाड़ देता है। और यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसको श्रवण करने की अगर जीव लालसा कर दे तो कृष्ण तथा सक्ष भागवतम के शब्दों को श्रवण करना चाहिए। हमने देखा था हमारे राजस्थान में एक बार दादाजी महाराज कथा कर रहे थे तो उसमें अयोध्या के वो अभी तो सभी छोड़ दिया रामायणी महाराज आते थे तो महाराज को बार बार झगड़ा करते थे, बोला तुम भागवत ये सब छोड़ कर तुम ये चिकले और ये चिकले मत दो, भागवतम के शब्द के सिवा और कुछ नहीं। उनका रोल जैसा वो मित्र थे लेकिन ऐसा कहाँ करते तुम ये भागवत को छोड़ कर दूसरा बात क्यों करते लोग क्या वो कथा कर कोई चुटकुला नहीं कोई मसाला नहीं कोई कुछ नहीं आप वही शब्द बोल रहे हैं लेकिन जो रसिक भक्त होते हैं उनको दूसरा बात डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए भागवतम के शब्दों पर बोलना खैर हम सब जानते हैं इसके लिए हम तो कुछ कुछ शब्दों को जानते हैं उन शब्दों पर बोलते हैं तो फिर खुद बड़े सप हर्द तुम सार निपात वेदम फिर कूदने के बाद उस सारे सब से वो जो कुंड था तो उसके तट पर भी बहुत से तट रहते थे बड़े बड़े बिंद बनाकर और जब जब कूदे और कूदने के बाद भगवान बहुत जोर से ऐसा हाँ तैरते हैं तो ऐसा धीरे धीरे देखते हैं जोर जोर से अपने हाथों को पटक रहे थे और पीछे से पांवों को भी पटक रहे इतना आंदोलित हो चुका फिर भी कृष्ण बड़ा जोर जोर से ऐसा जल को आंदोलित कर रहे थे और आंदोलित करते हुए जल को बहुत उसमें बहुत कंपन हो रहा था और जब संपन्न हुआ तो वो चाहते थे कि इससे कालिया कुपित हो, कालिया को इस प्रकार से चैलेंज दे रहे थे तो इसका चैलेंज देते हुए देखा कि ये कालिया को पता चल गया अरे अंदर कोई आया है ये तो बहुत अहंकारी था ये कौन आया हमको इस चैलेंज करने वाला कौन आया तो जान गया कि कोई अंदर आया है और तब वो देखने लगा और देखकर सीधा जल के बाहर आ गया और बाहर आकर कृष्ण को देखने लगा अपने जो भी झूठ ऐसा था करने लगा देखा उसने और देखकर जब देखा कि ये तो बहुत ही सुंदर बालक देखा बालक बहुत सुंदर था सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्री वत्स वत्सनम पीला पीताम्बर धारे जी स्मित सुंदर यक्षण किरण थी कमलोदर सदृश मंगल की विजय बहुत ही सुंदर मुस्कुराता हुआ इन्हें पीताम्बर धारण किए बहुत सुंदर बालक को देखा लेकिन हाय वो दुष्ट इतना सुंदर और कोमल बालक को देखने के बाद भी वो उन पर प्रसन्न नहीं हुआ देखकर भी बहुत क्रोधित हुआ देखने लगा और वो सब वर्णन किया कृष्णा के बाल घुंघराले थे पीला पीताम्बर था लेकिन जब कृष्ण उसमें कूद पड़े तो कूद पड़े तो जब ग्वाल बाल ने देखा कि नहीं ये तो कालिया के दह में कूद पड़े कालिया नाम रहता वहां कृष्ण डूब गए तो जो तट पर कोई गौवे खड़ी की गई गौवे की जो खड़ी थी ना ऐसे देखती रहेगी मूर्ति जैसा हो ना तो रो सकती है ना बोल सकती है तुम लगा रही बाप से कालिया के क्योंकि ये सब कालिया के प्रभाव को जानते थे और कुछ ग्वाल बाल जो वहां से गए मूर्छित हो गए और कुछ जो खेतों में किसान काम कर रहे थे वो भी देखकर दूर से देखकर वहां मूर्छित हो गए। कृष्ण कालिया के बारे में देखा जो अपना सर्वस्व कृष्ण को मानते थे वे इस प्रकार मूर्छित हो गए कृष्ण के इस पर आया हुए संकट को देखकर और रो रोकर चिल्ला गाय रहने लगी जो कुछ होश में थी वो रहने लगी और जो कुछ होश में थे वो चिल्लाने लगे हाय 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 क्या हो गया क्या हो गया। और इस प्रकार जब देखा और कृष्ण गिर गए तो सारे पृथ्वी में अक्षकुल प्रकट हुए वहां से वो तो मूर्छित होने लगे और वहां गोकुल में अक्षकुल होने लगे अक्षकुल तीन प्रकार के अक्षकुल होने लगे तीन प्रकार का अक्षकुल होता है आकाश में, पृथ्वी में और व्यक्तियों में। कभी कभी हमारे भीतर अपशकुन होता है। हमारे भीतर क्या अपशकुन होता है? हमारा कोई दाया आंग फड़कता है या बाई आंख फड़कती है, तो ये अपशकुन है। या पृथ्वी में कंपन हो रहे, कंपाई होती है भूकंप जैसा थोड़ा बहुत, ये भी अपशकुन है। और आकाश में उल्कापात, अग्नि जैसा या उल्कापात, आप सुनते रहते हैं उल्कापात हो रहा है, जैसे इन गाड़ियों जैसा गिरता है आकाश में, या आकाश में ऐसा धुंधलापन छा जाता है जिसको देखकर हमारा मन बिल्कुल ऐसा चिंता में हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो आकाश में अपशकुन दिखने लगे, पृथ्वी पर अपशकुन दिखने लगे, और सबके अंगों में अपशकुन दिखने लगे, जो गांव के अंदर थे उनकी ये दशा हो गई। तो अपशकुन दिखते ही उनके मन में शंका हो गई। क्या शंका हुआ? नित्य निश्चित कृष्ण पर कोई आफत है, कृष्ण निश्चित किसी संकट में, ये है स्नेह। क्यों ऐसा होगा? प्रेम के कारण। ये हमारा भी ये स्वभाव रहता है, ये हम सबका स्वभाव रहता है कि हमारा मन हमेशा अपने स्नेही के लिए अनिष्ट का विचार करता है। आपका कोई स्नेही है, पुत्र है या पत्नी है या कोई बंधु है, और वो कहीं गया है और कुछ कुछ लगता है बहुत भीड़ हो गया, तो अनिष्ट मन में होता है, कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कोई बिना किसी पकड़ तो नहीं दिया। हालांकि वो सुरक्षित है, तो भी स्नेह के कारण ऐसा मन अनिष्ट करता है, जिससे हम प्रेम करते हैं। तो हम तो संसार में अपने संबंधियों से प्रेम करते हैं, इसलिए उनके प्रति। लेकिन जो कृष्ण से प्रेम करता है वो कृष्ण के विषय में ऐसा करता है। ये भगवान योग माया का प्रभाव, वो कृष्ण से इतना, जैसे हम पुत्र के लिए रहे हो, कृष्ण को पुत्र मानते हैं, कृष्ण के लिए ऐसा सोच लो कि निश्चित कोई कृष्ण पर संकट है। एक और दूसरा कारण क्या था कि उस दिन बलराम साथ नहीं थे, बलराम जी का बर्थडे था, इसलिए बलराम जी साथ में गए, क्योंकि बलराम जी को साथ भेजते थे माता यशोदा, कहती जिसको कृष्ण का देखभाल रखना या उसको ध्यान रखना, बलराम जी कृष्ण का रक्षा करने के लिए। लेकिन मुस्लिम बलराम जी घर पर थे, तो एक तो कारण था कि उनका जन्मदिन था, और दूसरा कारण कृष्ण भी उनको साथ में नहीं लेकर गए, जान क्यों नहीं लेकर गए कि आज इसका दमन करना है नाग का, और ये बलराम जी इसका भी एक स्वरूप है नितेश नाग, तो इसकी जाति भाई का मैं करूंगा तो इसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कालिया की हालत भगवान ने बहुत खराब किया था, सब फन तोड़ दिए, ऐसा मतलब विकसित हो गए थे, और इतना विकसित हुए थे, इतना विकसित किए थे भगवान ने, उसका बहुत बुरा हालत हो गया था बेचारे। बाद में भगवान ने दृष्टि डालकर उसको ठीक कर दिया, लेकिन पहले बहुत बिगड़ दिया था, इतना हालत बिगड़ा था कि द्रौपदी जी ने लिखा है कि जब पहले पहले नाचे तो उसका विष निकल रहा था, सब विष निकल गया, लेकिन फिर कृष्ण इतना नाचे कि जिसके बाद अब रक्त भी निकलने, बीच निकलने रक्त भी निकलने, इतना और सब फन टूट गए, ऐसा अब इसको उठने की प्रक्रिया था। तो कृष्ण ने सोचा कि ऐसी हालत करूंगा तो इसको अच्छा नहीं लगेगा, आखिर मैं जाती भाई हूँ मैं सुना। और बलराम जी भी आगे कहते हैं, बलराम जी भी ऐसा कहते हैं, ओ आगे जब बलराम जी ने देखा कि कृष्ण उनकी कुंडली में है, तो बलराम जी हंसे, सब तो शोक कर रहे थे, दुखित हो रहे थे, रो रहे थे, और कृष्ण के विरह में बहुत उनको दुख हो रहा था। सुन्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहिणी, गोविंद के विरह में सब दुखी थे, उसी समय बलराम जी हंसे कृष्ण को, कृष्ण अंदर गए फिर उन कालिये को देखा, और देखने के बाद में कालिये ने उनको अपनी कुंडली में लपेट लिया था। कृष्ण भी बहुत समय तक, लगभग लिखा एक मुहूर्त तक, लगभग डेढ़ दो घंटा तक उसकी कुंडली में कृष्ण, अब देखे समय हो रहा है इसलिए मैं भी लपेटना। तो कृष्ण भी बहुत देर तक रहे, तो सब तो शोक कर रहे थे, और बलराम जी हंसे देख कर उसे, बलराम जी क्यों हंसे? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि बलराम जी ने सोचा कि मेरा भी एक स्वरूप शेषनाग है, लेकिन उसके साथ ये इस प्रकार नहीं खेलता है और ये साधारण भौतिक सांप के साथ खेल रहा है। मेरा जो शेषनाग रूप है उसके साथ तो ये कभी कृष्ण ऐसे खेला नहीं, कुछ खेलता नहीं है, ये सब के साथ खेल रहा है। बाप रे, ये सोच ऐसा अलग आचार्य लिखते हैं कि अरे बाप रे, इस प्रकार सोच कर बलराम जी हंसे। लेकिन जब ये अक्षतुल हुए और कृष्ण को वहां पर कालिया ने अपने लपेटने के लिए कुंडली में ले लिया, बहुत बड़ा नाग था, 101 फन थे और बहुत विशाल शरीर था और बीच में कृष्ण को लिया और कृष्ण भी ऐसा बीच में बिल्कुल। जब अक्षगुण के कारण ये सब बाहर निकले तो उनको तो पता चल गया कि कृष्ण पर ही संकट है, तो वहीं से वे अल्लाह करने उनको मन में संशय होते ही तो उनकी दशा मूर्छित जैसी होने लगी और माता यशोदा विशेष कर उनकी बहुत दशा हाय कृष्ण नीति तुम्हारे लाला पर बहुत संकट आ गया, संकट आ गया करके जाने लगी। कहाँ जाने की? जहाँ कृष्ण है। तो कहाँ कृष्ण कैसे पता चलेगा? तो माता यशोदा और उनकी सखियां जो वात्सल्य भाव की गोपियां, ये एक जो और कृष्ण के सम जो गोपियां हैं, युवती गोपियां, ये सब घर से बाहर निकले, बच्चे भी बाहर निकले, छोटे छोटे बच्चे भी निकल गए, सब गोप भी निकल गए, घर छोड़कर सब निकल गए, कोई भी घर में नहीं, सबको शंका हो गई कि निश्चित कृष्ण पर कोई संकट है, अपशगुन हो रहे हैं। ये अपशगुन अब तो कोई नहीं मानता, लेकिन पहले के लोग इस अपशगुन को बहुत मानते हैं। तो जब निकल गए, पास निकल गए तो रोने लगे, चिंता में लगे, क्या हुआ क्या हुआ, अब कृष्ण कहाँ है? तो वो रस्ते में कृष्ण के पांव के चिन्ह को देख रहे, कृष्ण के जो पद चिन्ह है, जब गोदाम को जाते थे तो कृष्ण के पद चिन्ह, हालांकि बहुत समय हो गया था निकले हुए, लेकिन कृष्ण के पद चिन्ह ब्रज में ऐसे के ऐसे अंकित रहते हैं, जो उनके पद चिन्ह में पत्ता ध्वजा जाओ त्रिशूल या संत जो कि चिन्ह रहते हैं, चिन्ह दिखते हैं स्पष्ट, क्योंकि उनके साथ जो गौआ या ग्वाल वाल जो भी रहते हैं, यहाँ तक कि गाय और बछड़े भी कृष्ण के चरण पर चरण नहीं रहते। अक्रूर जी भी जब आए थे और जैसा ही गोकुल में प्रवेश किया तो सोने के रथ पर थे, लेकिन जैसे ही कृष्ण के, क्योंकि कृष्ण अभी अभी गोचारण करके एक गोधूली बेला में अपने घर गए थे, तो अभी अभी गए थे, इसलिए बहुत ताजा ताजा चरण दिख रहे थे, वो रथ को छोड़कर कूदी मारकर गिर गए और उसमें लौटने लगे उन चरणों में। तो कहने का अर्थ कृष्ण के जो चरण है वृंदावन में, उनके ऊपर कोई चलता नहीं, यहाँ तक कि गौवे भी पशु पंछी भी नहीं करते, उनको ऐसे देखते प्रणाम करते, ऐसे कैसे रहते हैं अमोक रहते हैं। तो उन अमोक चरणों को देख कर वे उन चरणों के पीछे पीछे से देखकर वहां से उस तरफ जाने लगे। एक एक प्रसंग पर बहुत बहुत प्रसंग याद आ जाते हैं, रामायण का प्रसंग याद आ गया, जब भरत महाराज रामपुरी में जा रहे थे तो उसी रास्ते से भरत जी भी चल रहे थे, तो कई राज सेवक के उन्होंने कहा कि महाराज रथ पर चढ़ जाइए, रथ पर चढ़ जाइए, ऐसा आखिर भरत जी तो राजकुमार हैं। भरत जी ने कहा नहीं मैं रथ पर चढ़ू, जिस रास्ते से राम गए हैं और उस रास्ते में राम के चरण कमल हैं, उस पर मैं पैदल भी नहीं चलना चाहता हूँ, उस चरण कमलों पर मेरा मस्तक रख के चलना चाहिए, लेकिन हाय मैं इन चरणों को रखकर चलना, जहां जहां भगवान राम के चरण है वहां तो अपने मस्तक को रखना चाहिए और वहां मैं काम रखते चल रहा हूँ, तुम रथ पर जा रहे, रथ पर कैसे बैठा मेरे प्रभु के चरण। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण के चरणों को देखते देखते वे उस तट पर चले गए जहां कृष्ण की नहीं सका, और जैसे ही माता यशोदा ने देखा कृष्ण को तो उनकी दशा बहुत ही विहल हो गई, वो उस रथ उस दहने यशोदा भी कूदना चाहती थी, सारी गोपियां जो वास्तव भागी वो रोने लगी, लेकिन रोते रोते यशोदा को रोक रही है, रोक अरे यशोदा मत जा, उसको सांत्वना दे रही, खुद रो रही है लेकिन रोते हुए यशोदा को सांत्वना, नहीं यशोदा नहीं, तू अंदर से जाना है, अरे तुम बहुत पुण्यवती हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुमने नारायण की उपासना की है, तुम जानती हो ना वो कूदना आई थी तो किस प्रकार हमारे लाला की नारायण ने रक्षा कर लिया, वो त्रिनावत आया तो उससे भी नारायण ने रक्षा कर लिया, तुमने बहुत नारायण की उपासना की। ना ही ये भी मना तो अस्थित प्रत्यवायो नहीं सके स्वश्य धर्मश्य काय भगवान। यहाँ पर सिद्धांत होता है कि हम अगर भगवान का भक्ति करते हैं तो वो हमको महान भय से बचाते हैं। ये वो क्या कह रही, तुमने नारायण की उपासना की है, तुमने बहुत पुण्य कर्म करिए, तुम भाग्यशाली हो, इसलिए शोक मत करो। जिस प्रकार आगे भी संकट आए थे और कृष्ण बच गए, इसी तरह अब भी बच जाएंगे, तुम शोक मत करो। इस प्रकार सांत्वना दे रही है और शरण रो रही है और सांत्वना दे रही है माता यशोदा को, रो कर रही है, वे सब गुरछित जैसी हो रही है गोपियां और माता यशोदा। तो उनको माता यशोदा को ये सारी गोपियां रोक रही हैं, उनकी सहेज जो उनकी उम्र की है। उधर जो युवा गोपियां हैं वे कृष्ण को देखकर वे भी बहुत ही असहज उसको प्राप्त हो रही है। वे देख रहे हैं कृष्ण को, इस प्रकार देखकर उनको कृष्ण की पहले की लीला याद आ रही है, उनको कृष्ण का हासिल और कृष्ण की ये नटखट लीलाओं का स्मरण करके वो वे भी मूर्छित अवस्था में हो रही है और ऐसा सोच रहे हैं कि बस कृष्ण की लीला ये त्रिलोकी सुनिएतम जगत सर्वम गोविंद विरहन, गोविंद के विरह में उनको सारा जगत सुनने दिखाई देने लगा। और इस प्रकार वे कृष्ण का स्मरण करने लगी, कृष्ण की चेहरे जो मुस्कान थी उसका स्मरण करने लगी, कृष्ण के साथ जो उनकी नटखट लीलाएं होती थी उसका स्मरण करने लगी और इस प्रकार कृष्ण के विरह का अनुभव करने लगी। उधर नंद महाराज भी उसमें कूद कर अपने प्राणों को त्यागने को तत्पर और उनकी उम्र के ग्वाले भी। जब इस प्रकार नंद महाराज की दशा को देखा तो बलराम जी ने उन सबको रोक दिया और वहां पर सुखदेव गोस माए थे भगवान बल, बलराम जी को भगवान कहते हैं, वृंदावन का भगवान मतलब समर्थ व्यक्ति है और वे रोकने का समर्थ है और अपना अपार बल है उनके पास। और राम बल भद्र और राम क्योंकि वे ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करते हैं इसलिए उनको रोक दिया। और कैसे रोका, तो अपना भगवान है ना, सर्वशक्ति से अपनी शक्ति से रोका। हो सकता है कि ज्यादा ग्वाल वालों को तो ज्यादा रूप अपना विस्तार करके भी रोक सकते हैं, अपने हाथ उनको इतना बढ़ाया कि सबको रोक दिए या एक एक को भी रोक दिए एक एक करके। इस प्रकार इसलिए भगवान समर्थ बलराम जी गोपालों को रोक रहे हैं और उनको सांत्वना दे रहे हैं, कुछ को उनको रोक, कुछ को कुछ पांचों से सांत्वना देकर रोका, कुछों को अपनी हंसी से ऐसा लिखा गया मुस्कुरा कर देखा तो वो थोड़ा से रोक गए और किसी को अपने हाथ से बल से रोका। इस प्रकार गोपों को बलराम जी ने रोका और गोपियों को माता यशोदा को दूसरी गोपियों ने रोका। और लेकिन फिर भी कृष्णा ऐसे अभी तक उस कुंडली में बंधे और वहां पर शुक्ल गोस्वामी लिखते हैं कि कृष्णा ने देखा वो स्त्री कुमार अति दुख अति दुख में थी। बड़ी बड़ी गोपियां और वो तो थे गोप तो थे लेकिन कृष्णा ने जब देखा कि स्त्रियां और कुमार मतलब छोटे छोटे बच्चे भी रो रहे हैं, ये जो कृष्ण की लीला है ये लीला कृष्ण प्रेम को प्राकाष्ठा तक ले जाने वाली लीला है। सबका प्रेम प्राकाष्ठा पर कृष्ण के लीला तो प्राण अति दुखा का अर्थ करते हैं भक्त लोग आचार्य, स्त्री और बच्चे अति दुख में थे, दुख में नहीं थे अति दुख में थे। अति दुख का यह था कि अब इससे तो मर जाना अच्छा, मर जाएंगे एक बार मर गए तो फिर तो शांति फिर तो कुछ नहीं। कुछ लोग कहते हैं बहुत अति दुख होता है तो आप प्रोत्साहित कर लेंगे, ये प्रभु जी भी कल कह रहे हैं कह रहे थे ना मेरे को अति दुख, लेकिन इनको कृष्ण का दुख नहीं था इनको इनका दुख था, ये नहीं इनको तो कृष्ण का दुख था। कुमार स्त्रियां अति दुख अति दुख में थी, ऐसा दुख था कि अब सहा नहीं जा रहा है, प्राण छोड़ दे तो होता है इससे तो अच्छा मर जाना, मतलब इसको अति दुख कहते हैं। तो कृष्ण ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे और स्त्री ये भी रो रहे हैं। यहाँ तो हम 60 साल के हो गए लेकिन कृष्ण के लिए नहीं रोते, वे तो बस स्त्री और बच्चे के लिए। लेकिन यहाँ स्त्री और बच्चे कृष्ण के लिए बोल रहे हैं। ये है कृष्ण प्रेम की परंपरा, यही है प्रेमा कुमर तो महा रम्य काल्पिता उपासना व्रज वधु भर गए यो कल्पिता। वो कल्पिता ये रम्य काल्पिता उपासना जो ब्रज की गोपियां उन्होंने जो उपासना की हो, तो इस प्रकार हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम। तो मधुबन तो इस प्रकार मैं बता रहा था कि कृष्ण प्रेम प्राकाष्ठा इस लीला में प्रकट होती है, कृष्ण से कितना प्रेम कर रहे थे ब्रजवासी। और कृष्ण इस प्रकार अपने को अभी तक कुंडलियों से जुड़ाएंगे, लेकिन जब देखा कि बच्चे और स्त्रियां भी हो रही हैं तो कृष्ण को अब दया आ गई, उनका हृदय बिगड़ गया। वास्तव में समाज में जो छोटे छोटे बच्चे हैं और स्त्रियां हैं उन पर तो कम से कम दया आना ही है, दया तो सब जीवों पर करना चाहिए, लेकिन यहां पर भगवान ने देखा कि बच्चे और स्त्रियां भी हो रही हैं तो स्त्रियों और बच्चों को देखकर तो कम से कम हृदय गरीभूत होना ही है। और भगवान का हृदय गरीभूत हो गया। यहाँ प्रश्न हो सकता है तो फिर इतना दुख दिया, तो हमारे आचार्य ने लिखा है कि वास्तव में ये दुख जो है इस भौतिक संसार के सुख से कई गुना अधिक सुखकारी है। कृष्ण के विरह का जो दुख या कृष्ण के लिए जो रोना, ये रोना ये भौतिक दृष्टि से हम नहीं समझते, ये पूर्ण क्या स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, और उसमें जो आनंद है वो संसार में आनंद है, और यही जीव का बस परम धन है। रोना चाहिए कृष्ण के लिए, रोना। केशव महाप्रभु ने तो यही काम किया और यही सिखाया। तो इतना कृष्ण इतना देर क्यों रखे उनको कुंड में, तो एक तो कृष्ण इसलिए रखे कि कृष्ण अब कालिया को ब्रज से भगाना चाहते। तो इस पर यह कई भक्तों को प्रश्न हो सकता है कि अरे काली सब तो कहते वृंदावन जाओ वनोगतम यद हरि मात्रे, और ये जरा कालिया वृंदावन में आया और इसको कृष्ण भगाना चाहते हैं, अब तो 20 दिन निकाल देंगे वो भी निकाल देंगे फिर भगाना क्यों चाहते हैं। लेकिन कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि मैंने कालिया को क्यों भगा, ये कालिया कितना दुष्ट था मालूम है ना तुमको, कितना दुष्ट व्यक्ति था, इसका अनुभव सबको हुआ कि ये कालिया बहुत दुष्ट व्यक्ति है। हमारे कृष्ण को इतना उनको अपने को जो दुख दे रहा था वो बात याद नहीं आ रही, उनको कृष्ण को कितना दुख दिया ये याद करेंगे तो हाँ ठीक किया कालिया को। हालांकि कृष्ण जो करना चाहते थे अपने भक्तों के लिए करना चाहते, अपने भक्तों को और मान लीजिए उसके लिए कृष्ण कालिया को भगाना चाहते हैं। इसी बात को पूतना वध ने भी सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पूतना जब कृष्ण को मारना चाहती थी तो कृष्ण उससे पूतना का प्राण हरण नहीं किए। वहां लिखते हैं सुखदेव गोस्वामी कि कृष्ण ने उनका अस्तन किया और प्राण भी पी लिया। तो वहां पर दो शब्द उपयोग किए गए, स्तन किया और रोष, रोष मतलब क्रोध। तो एक भक्त ने बताया कि कृष्ण ने तो उसका स्तन ही किया और तो कृष्ण के क्रोध ने उनका प्राण हर लिया। कृष्ण को क्यों क्रोध था, क्योंकि पूतना बाल घाटी ब्रज ग्राम आदि ब्रज का जो भी ग्राम मथुरा मंडल था वहां पर वो छोटे छोटे बच्चों का हत्या करती हुई आ रही थी। तो कृष्ण को इसलिए क्रोध कि उन्होंने हमारे यहाँ पर जो ब्रजवासी थे उनके बच्चों की हत्या, तो कृष्ण को ये होता उनको मारने के लिए इनका रोष नहीं था, कृष्ण ने तो उनका स्तन किया लेकिन उनके रोष ने उनके क्रोध ने उनके प्राण के लिए। तो इस प्रकार कृष्ण ये दिखाना चाहते थे कि ये कालिया कितना दुष्ट व्यक्ति था, लेकिन जब कृष्ण ने देखा कि स्त्रियां और बच्चे भी वो रो रहे हैं सब दुखी हैं, तब कृष्ण ने अपने शरीर को वही विस्तार किया, इतना विस्तार करने लगे कृष्ण अपने शरीर का कि अब कालिया का जो शरीर है जैसे लगता है कि अब नहीं छोड़ा तो ये टूट जाएगा, और इतना वेदना होने लगा तो तुरंत ही कालिया ने अपना पकड़ ढीला कर दिया। ढीला करते ही कृष्ण को उधर बाहर निकल गया और कालिया देखने फिर भाप रही, अभी अभी तो कोमल जैसा था मेरे लपेटने, ये क्या है, वो तो आध्यात्मिक हो गया, ये क्या हो गया, ये तो बहुत शक्तिमान लगता है, इतना ताकत अगर मैं ना छोड़ता तो मेरे का टुकड़ा हो जाता, इस प्रकार वो आश्चर्यचकित होकर देखने लगा, बिल्कुल ध्यान से देखने लगा। लेकिन इतना देखने के बाद भी अब वो कृष्ण को दर्शना चाहता है, ये देखिए दृष्टता का लिया, समझ गया कि कृष्ण इतने शक्तिशाली हैं, फिर भी लोग सुनते हैं जानते हैं कृष्ण के बारे में, कृष्ण इतने दया का, फिर भी कृष्ण को अपनाते नहीं, ये बड़े दुख की बात है। जाना उन्होंने कृष्ण के बारे में, कृष्ण इतने महान थे, कृष्ण का जिन्होंने शरण लिया उनको कृष्ण ने रक्षा किया, सब प्रकार से हम अगर सुरक्षित होना चाहते तो कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, फिर भी एक्सेप्ट नहीं करते, कालिया ने एक्सेप्ट नहीं किया कृष्ण को, फिर भी डरना चाहता है, क्यों, अब वो दसने के लिए वो देख रहा है अपनी दोनों सांप की जो जीवा होती है वो आगे से फटी हुई होती है, इस प्रकार अपने लग लग होतों को चाटता हुआ कृष्ण को देख रहा है ध्यान से, और कृष्ण को देख रहा है, कृष्ण को दर्शना चाहता है, कृष्ण तो भी उसके पास नजदीक जाते हैं, नजदीक जाते हैं, जैसे वो दर्शने की चेष्टा करता है तो घूम जाते हैं, मतलब थक जाते हैं, तो फिर वो भी घूम जाता है, फिर इधर जाते हैं तो फिर थोड़ा नजदीक जाते हैं, उसको उकसा रहे हैं, मतलब वो कहीं उत्साहित अउत्साहित ना हो जाए, तो उत्साहित कर रहे हैं जहां से अभी दस लोग, लेकिन जैसे दसने को करता फिर घूम जाते हैं, तो वो भी घूम रहा है, कृष्ण तो बड़ा तेजी से घूम रहे, बहुत स्फूर्ति ले, ऐसा ऐसा इतना घुमाया कि बेचारा घूम गए थक, तो लास्ट योनियों में जी हम एक भक्त को कल ही बता रहे थे कि प्रभु जी आप कृष्ण की शरण ले, अगर आप चाहते हैं कि नहीं लेना है, जब नहीं करना है, ठीक है, इस जन्म में नहीं, आते जन्म में और 10 जन्म लेंगे, 100 जन्म लेंगे, 84 का एक और चक्कर पार करके, लेकिन हमारा उद्धार मंगल तो तभी होगा जब हम कृष्ण का शरण लेंगे, तो अभी तो यार घूम के एक दिन तो लेना ही, उसके बिना जीव का उद्धार, तो बुद्धिमान व्यक्ति फिर क्यों देर करे, घुमाया और घूमने के बाद जब थक गया तब कृष्ण ने थक गया, लेकिन फिर कर रहा था, आदमी टूट जाता है फिर भी अहंकार, तो कृष्ण ने देखा कि अब ये शिथिल हो गया है, तब कृष्ण ने उसके स्थान को अपने हाथ से पकड़ा और पकड़कर दबाकर उसके ऊपर कर, तो मैं जाता हूं समय बहुत हो चुका है, अगर भगवान की लीला का तो आए हैं तो यहीं पर विराम देते हैं कि कृष्ण आप वहां चले हैं नृत्य करने की इच्छा से, सब देवता लोग आकाश में आ गए, अब जान गए कि वो हमारे प्रभु नृत्य करने वाले हैं, उस नृत्य में पूरा सहयोग करने के लिए सब बाली इंद्र नाचने वाले गाने वाले कीर्तन करने वाले आकाश में आ गए हैं, अब कृष्ण कार्य के अनुभव नृत्य करेंगे, इस प्रसंग को यही विराम देते हैं, नृत्य करने दो, अरे कृष्ण।